अक्षय जी, हमें अभियुक्त के पास जाना है। ड्राइव करते हुए अक्षय के कानों में आहाना के ये शब्द पड़ते ही वो चौंक कर पलट गया और पैसेंजर सीट पर बैठी आहाना को देखने लगा। अनु, अभी जाना है? अक्षय ने हैरानी से सवाल किया। आहाना ने सिर हिलाकर हामी भरी। जी, हम उन्हें उनके भाई बहनों से मिलवाना चाहते हैं। उन्हें बताना चाहते हैं कि भले ही उनके जाने से हमारी जिंदगी में जो खालीपन आया था वो अब भर गया है, पर आज भी हमें उनकी कमी उतनी ही खलती है। हम उन्हें उतनी ही मोहब्बत करते हैं और हमारी ममता पर उनका हमेशा उतना ही हक रहेगा जितना इन दोनों का है। वो हमारी पहली संतान थे जिन्हें हम कभी नहीं भूलेंगे। आहना की बातें सुनकर अक्षय भी भावुक हो गया। अभियुक्त की याद उसे भी आती थी और शायद उसकी कमी कोई कभी पूरी नहीं कर सकता था। वे दोनों उसके पास जाते ही रहते थे, पर आज आहना के वहां जाने की ख्वाहिश ने अक्षय को उलझन में डाल दिया। अनु, आज नहीं, कुछ दिन बाद चलते हैं। अभी आप ठीक नहीं हैं, उठने बैठने और चलने में बहुत तकलीफ होती है आपको। जब थोड़ा रिकवर कर लेंगी तब चलेंगे हम हमारे बच्चों को उनके बड़े भाई से मिलवाने। विचलित निगाहों से आहना को देखते हुए उसने अपनी बात रखी। जवाब में सुनी निगाहों से उसे देखते हुए आहना ने बस इतना ही कहा, हम आज और अभी ही वहां जाना चाहते हैं। भाई भाभी कह रही हैं तो चलते हैं। पीछे बैठे अन्वय ने आहना की बात का समर्थन किया और आखिरकार अक्षय को आहना की बात माननी पड़ी। कुछ देर बाद कार कब्रिस्तान के बाहर आकर रुकी। अंतरा और अन्वय दोनों बच्चों को लेकर कार से बाहर निकले। अक्षय पहले खुद उतरा, फिर दूसरी तरफ आकर आहना को संभाल कर उतारा और दोनों बच्चों को लेकर चारों अंदर चले गए। अभियुक्त की कब्र पर जाकर बीती बुरी यादें उनके मन पर हावी होने लगी और सबकी आंखें नम हो गईं। आहना ने अपने दोनों बच्चों को अभियुक्त से मिलवाया, कुछ बातें की, फिर भारी मन से सब घर की ओर चल दिए जहां सब बड़ी ही बेसब्री से उनके आने का इंतजार कर रहे थे। चारों बच्चे लेकर फ्लैट पर पहुंचे। सबसे पहले दादी ने आहना और दोनों बच्चों की नज़र उतारी, फिर जयंती जी और मामी दोनों बच्चों को नहलाने ले गईं और अक्षय आहना को कमरे में ले गया। राशि सबका नाश्ता तैयार करने लगी। नहाते हुए दोनों बच्चों ने रो रोकर पूरा घर सर पर उठा लिया। उनकी करुण रुदन ने अक्षय और आहना दोनों को बेचैन कर दिया। नहा धुलाकर मालिश करके दोनों बच्चों को तैयार करके अक्षय आहना के कमरे में लाया, जहां आहना नहा रही थी और अक्षय बच्चों का सामान सेट कर रहा था। दोनों बच्चे जोर जोर से रो रहे थे, शायद उन्हें भूख लगी थी। आवाज सुनकर आहना जल्दी से नहा कर निकली और तेज कदमों से अक्षय की ओर बढ़ते हुए व्याकुलता से बोली, अक्षय जी लाइए उसे, मुझे दीजिए, भूख लगी होगी उसे। आहना अक्षय से बच्चे को लेती उससे पहले ही जयंती जी ने उसे टोक दिया। अनु, ऐसे बच्चे को दूध नहीं पिलाएंगी आप, अभी नहा कर आई हो, पहले कुछ खा लो जिससे शरीर में गर्मी आए, वरना उनकी तबीयत खराब हो जाएगी। जयंती जी की बात सुनकर आहना के आगे बढ़ते कदम रुक गए। अक्षय ने उसे वहीं रुकने को कहा और खुद अपनी बिटिया को लेकर कमरे से बाहर चला गया। आहना जब तक सिंदूर लगाकर तैयार हुई, पल्लवी उसका खाना लेकर आ गई। अभी उसे ज्यादा मसालेदार खाना नहीं खाना था, इसलिए उसके लिए ओट्स बनाए थे। साथ में गोंद के लड्डू थे जिनमें खूब सारे ड्राई फ्रूट्स डाले थे। अपना नाश्ता देखते ही आहना का मुंह बन गया। पल्लवी, ये कैसा खाना लाई हो तुम हमारे लिए? हॉस्पिटल में भी ऐसा ही फीका बेस्वाद खाना मिलता था और अब घर आकर भी हमें खाने के नाम पर टॉर्चर किया जा रहा है। मेरी प्यारी नंदरानी, अभी आपको यही सब खाना है, पल्लवी ने उसे खाने में नखरे दिखाते देखकर भाभी का फर्ज निभाते हुए प्यार से उसे समझाया। पर आहना अब भी नाक मुंह से कोड़े अपने खाने को घूर रही थी। अनु, अभी कुछ वक्त तक आपको ज्यादा नमक मिर्च और मसालेदार खाने से दूर रहना है और खाने में स्वाद को छोड़कर पोषक तत्वों पर ध्यान देना है। आपके दोनों बच्चे अभी आप पर निर्भर हैं। आपका खान पान अच्छा होगा तभी तो दोनों बच्चों की भूख शांत कर पाएंगी। अगर खुद ही खाने पीने में लापरवाही करोगी तो पर्याप्त मात्रा में दूध कैसे बनेगा और कैसे अपने दोनों बच्चों का पेट भर पाओगी? जयंती जी ने गंभीरता से अनु को समझाया और अपने बच्चों के लिए उसने चुपचाप वो नाश्ता खा लिया। अक्षय ने बच्ची को उसे दिया और जयंती जी से अपने बेटे को ले लिया। आहना ने बच्ची को सीने से लगाते हुए उसे अपने आंचल में छुपा लिया। अक्षय टहलते हुए अपने बेटे को चुप करवाने लगा। कुछ देर बाद पेट भरते ही दोनों बच्चे सो गए। अक्षय उनके पास बैठा प्यार से उनके सर पर हाथ फेरने लगा और आहना बेड की दूसरी तरफ लेटी लबों पर सौम्य सी मुस्कान सजाए उन तीनों को देख रही थी। सो गए दोनों, आप जाकर नाश्ता कर लीजिए, हम हैं इनके पास। कुछ देर बाद आहना ने अक्षय को बाहर जाकर नाश्ता करने को कहा। वो तो खाना खा चुकी थी पर अक्षय ने सुबह से अब तक कुछ नहीं खाया था। अक्षय ने सिर हिला दिया। पहले अक्षय ने अपने दोनों बच्चों के सर को प्यार से चूम लिया, फिर घूमकर आकर आहना के माथे को चूम लिया। आप आराम करिए, मैं आता हूँ नाश्ता करके। आहना ने मुस्कुराकर सहमति में सिर हिला दिया। अभी बच्चे छोटे थे तो भूख लगने पर ही उठते थे और दूध पीकर वापस सो जाते थे। यहाँ सब उनके साथ खेलने को व्याकुल रहते थे पर बच्चों के साथ खेल नहीं पाते थे। शाम तक सब यहीं रुके। उसके बाद जयंती जी को छोड़कर सब अपने अपने ठिकानों पर लौट गए। रात में रोज की तरह अक्षय ही आहना के साथ रुका था। रोज की तरह रात में कई बार बच्चों के रोने से उनकी नींद खराब हुई थी और बीते दिनों से यही होता आ रहा था। कभी भूख लगने पर तो कभी सुसुपोटी करते पर दोनों उठकर रोने लगते और मजे की बात थी कि दोनों साथ ही रोना शुरू करते थे। ऐसे में अक्षय और आहना के लिए मुश्किलें बढ़ जाया करती थी। आहना जब तक एक को दूध पिलाती, अक्षय दूसरे को संभालता।
मर्दों वाला गुरूर नहीं था उसके अंदर, न ही घिन करता था, न ही ये कहकर बच्चों की सारी जिम्मेदारी आहाना पर डालता था कि ये सब औरतों का काम है, माँ का फर्ज है। जितना बन पड़ता उसका साथ देता था, नींद खराब होने पर खींचता भी नहीं था। उल्टा जहाँ तक बन पड़ता कोशिश करता था कि आहाना डिस्टर्ब ना हो, उसकी नींद ना खराब हो, वही बच्चों को संभाल ले, क्योंकि अभी आहाना ठीक नहीं थी और उसे आराम की जरूरत थी। दो बच्चों को संभालना आसान नहीं था, पर दिन में परिवार वाले और रात में अक्षय के साथ से आहाना सब मैनेज कर लेती थी। रात कटी और अगले दिन सुबह से ही नामकरण की तैयारियां शुरू हो गईं। तय वक्त से पहले सब लोग यहाँ इकट्ठे हो गए थे और आज तो दोनों बच्चों के लिए ढेरों खिलौनों के साथ नए नए कपड़े और भी बहुत से गिफ्ट्स आए थे। नए नए कपड़ों में सजे दोनों बच्चे आज राजकुमार और राजकुमारी लग रहे थे। आहाना अक्षय समेत बाकी सब भी तैयार थे। उचित मुहूर्त पर पूजा शुरू हुई। बच्चों के जन्म की तिथि और समय के अनुसार उनके राशि के अक्षर निकाले गए और नाम रखने की जिम्मेदारी उनकी बुआ को सौंप दी गई। फलक ने अंतरा से गुपचुप कुछ बातें की जिसे बाकी लोग जाकर भी सुन न सके, पर ध्यान सबका उन्हीं दोनों पर था।